الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چین کے ناظرین فرام مازی کی یادیں لیے حاضر ہیں رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارے ساتھ اس ماضی کی یادیں پروگرام میں ایک ایسے رکن شورا ہیں جن کو شاید آپ مدنی چینل میں دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. میری مراد ابو البیان حاجی اظہر اتاری ماشاءاللہ یہ آج ہمارے ساتھ ہیں. بات کا آغاز کرتے ہیں ان سے کچھ ان کی ماضی کے متعلق سوالات کریں گے. حاجی اظہر اتاری جی ماشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ دعوت اسلامی سے پہلے اپنی کچھ زندگی کی یادیں جس کا تعلق بیان کیا جا سکتا ہو کہ دعوت اسلامی سے پہلے آپ کی زندگی کا انداز کیا تھا اور کہاں سے آپ کی ولادت کا سلسلہ ہوا, آپ کے ارد گرد کا ماحول کیسا تھا, پھر اس کا کچھ پتہ چلے تو پھر ہم بڑھتے ہیں اس کے آگے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ منڈی واربرٹن ہے پنجاب میں, شیخوپورہ تھا ڈسٹرکٹ, اب ڈسٹرکٹ ننکانہ ہے اس کا, منڈی واربرٹن ایک قصبہ ہے.
اچھا شیخوپورہ کی طرف ہے.
جی شیخوپورہ کی طرف. تو وہاں ہمارا آبائی گھر ہے, وہیں میرا میری پیدائش ہوئی اور بچپن بھی وہیں گزرا, میٹرک تک میں وہیں رہا. تو ارد گرد کا ماحول ایسا,
بھائی بہنوں میں بڑے چھوٹے,
میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں.
بھائیوں سب سے چھوٹے ماشاء اللہ. ہاں چلو چھوٹے کو تھوڑا لاڈ واڈ بھی ملتا ہے.
جی تو اس میں یہ تھا کہ بچپن جیسا ہوتا ہے, ایک مطلب ایسا کہ ماحول تو تھا نہیں اس وقت, دعوت اسلامی کا دینی ماحول بھی تھا میسر نہیں تھا, لیکن ایک جیسا بچپن ہوتا ہے کھیل کا اور دوسرا محلے کا. لیکن ارد گرد کا جو ماحول تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایک نقش چیزیں ہوتی ہیں انسان کی,
بڑے بڑے ہو گئے تھے
جی, جو مطلب جو یادداشت میں چیزیں رہ جاتی ہیں. بچپن کی بات چیز یاد بھی نہیں نا جن کو, مطلب ہے کہ جو والدین سے ہی سنی,
مطلب کچھ باتیں یاد ہوتی بھی لیکن ان کو بیان کرنے جیسا نہیں ہوتا
ہے. ایسا بھی اب بچپن بچپن ہے,
بچپن بچپن ہوتا ہے
تو ساری بات ہے. شرارتیں کچھ ہوتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو جو چیزیں جو شعور جیسے انسان کا رہتا ہے, وہ مطلب جو چیزیں آگے چل کے انسان کی کچھ زندگی کے ڈیسیژنز میں شامل ہو جاتی ہیں جو چیزیں. تو ارد گرد کا ماحول جو تھا نا وہ ایسا لڑائی جھگڑے فساد اور مطلب ایسا.
آپ ایسے تھے یا آپ کے گرد ماحول ایسا تھا؟
ارد گرد کا ماحول بھی تھا اور جیسے پھر کالج لائف میں گئے تو پھر ان چیزوں کو کچھ عرصہ لے کے چلے بھی. تو جیسے کہتے ہیں نا موٹا مار کے لڑ لینا, خام خواہ کی لڑائی لے لینا اور ایسے مطلب چیزیں, ماحول جس میں انسان جیسے دوست جیسا ماحول جیسے مطلب گیدرنگ ملتی ہے, کمپنی ملتی ہے, ان چیزوں کا اثر تو ظاہری بات ہے کہ وہ طبیعت پہ آنا شروع ہو جاتا ہے, جیسی چیزیں چلتی رہی ہوں. لیکن اس سے ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ان ساری لڑائی جھگڑوں میں, دنگے فساد میں اور ان چیزوں میں ایک چیز تو ذہن میں جو ہے نا وہ بنتی چلی گئی کہ یہ ان چیزوں میں سکون نہیں. مطلب لڑائی ہے, جھگڑا ہے, کسی کو مار لیا یا کسی جھگڑا کر لیا, مطلب ظلم و زیادتی بھی ارد گرد کے ماحول میں دیکھی کہ کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے, کوئی کسی سے زیادتی کرتا ہے, لڑتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, مطلب ان چیزوں میں ایک دلی سکون نہیں ہے, ایک بے سکونی ہے, ایک خوف کا ماحول ہے, ایک فساد کا ماحول ہے اور اس میں ذہنی اور قلبی سکون میسر نہیں. خود بھی جیسے مطلب ہے کہ کالج لائف میں ان چیزوں میں انوالو رہے کچھ عرصہ, لیکن ایک چیز یہ تو طے ہو چکی تھی کہ یہ ان چیزوں میں مزہ بھی نہیں ہے, سکون بھی نہیں ہے.
شریف لوگ بھی اسے ایسے لوگوں کے قریب بھی نہیں آتے, پھر وہ ان کو اسی طرح کے دوست, اسی طرح کے مطلب کے مار دھار والے لوگ ملتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ شریف طبقہ بھی ہوتا ہے جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا, تو پھر وہ ایسوں کو کہ نہ قریب آتا ہے, نہ ایسوں کو کبھی دوست بناتا ہے, نہ ایسوں کو کبھی اس کی کوئی گیدرنگ نصیب ہوتی, پھر وہ اسی طرف اس کا رخ رہتا ہے جہاں مار دھار ہو رہی ہوتی ہے.
जी ऐसे ही वो उसकी मतलब लाइफ ही ऐसे माहौल में चली
ओके,
जाती है, वो मतलब है उसका।
तो ये आपके इर्द गिर्द का हाल था।
जी
फिर क्या हुआ?
फिर ऐसा हुआ कि एक दो बड़ी लड़ाइयाँ हो गई, फिर
अच्छा,
उसमें रिवर्स हुए, फिर वापस मैं अपने वार बटन आ गया था। मैं मैट्रिक के बाद चला गया था कॉलेज, पिंडी पढ़ने चला गया था, मामू थे मेरे वहाँ पे, तो मामू भी पुलिस में थे। अब उसके बाद वो उसमें एक और माहौल
वो
था,
जानते नहीं मेरा मामू पुलिस में,
ये
जानते नहीं
सही
मेरा मामू
पकड़ा,
पुलिस में।
सही पकड़ा आपने। तो वो चीज और एक और मतलब
अच्छा, हाँ, आ जाती है, आ जाती है।
नफ्स को ये करती थी कि हम तो, मेरा मामू तो SHO
हाँ
है उस इलाके के, SHO, अब वो
हाँ
इंस्पेक्टर हो तो बोलो, उसमें फिर और ज्यादा वो उसमें बेबाकी सी आ जाती कि मैं जानते नहीं कौन हूँ। तो लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं वारबटन वापस आया, तो मुझे वहाँ दावत इस्लामी का, मतलब वो दौर ऐसा था कुछ अर्सा मेरा जिंदगी का बहुत ज्यादा बेसुकूनी में गुजरा, बहुत ही ज्यादा जिसको कहते
होता
हैं।
है जरूर ऐसा कि शायद, अगर क्योंकि मदनी चैनल के नाजरीन को भी ये मैसेज चला जाए तो बेहतर है, कि इस तरह की मारधार वाली जिंदगी और लड़ाई झगड़े वाली जिंदगी, एक दूसरे के खिलाफ चलने वाली जिंदगी, और बस मुसलमानों को तकलीफ देना, ज्यादती करना, बदमाशी करना, फिर इसी तरह के गैदरिंग में रहना, जब माहौल ही हमने बेसुकून बनाया हुआ है, तो हमें सुकून कहाँ से मिलेगा? पुरसुकून जिंदगी के लिए इन तमाम सब चीज़ों से दूर रहने में ही आफियत है। कि वो जो अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी नसीहत फरमाते हैं कि पत्थर खाना तो सुन्नत है, वही पत्थर उठाकर मारना सुन्नत नहीं
नहीं
है। बड़ा नरमी का और खूबसूरत दर्श देते हैं अमीर अहले सुन्नत। मैंने जब भी अमीर अहले सुन्नत का ये वर्ड कहीं कोट किया है ना, ये बड़ी खूबसूरत कॉल है एक तरह से ना, अकवाल जरी होते हैं ना,
जी जी
ये एक अकवाल है अमीर सुन्नत, अकवाल अमीर अहले सुन्नत। तो इसमें से ये एक, जहां भी मैंने ये कोट किया है, बयान किया है कि हमारे पीरो मुर्शिद बुजुर्ग यही फरमाते हैं, तो वो क्योंकि ये सुनने वाले के लिए भी अच्छा साउंड करता है लफ्ज, मैंने बनती खूबसूरत वर्ड है ना, ये
ऐसे
पत्थर खाना तो सुन्नत है, वही पत्थर उठा के मारना सुन्नत
नहीं,
नहीं है। जी साउंड बहुत अच्छा करता है, तो पूरा मन बंदा रहता है तो पुरसुकून भी रहता है।
ऐसे ही
जब अपना ही अमन दुरुस्त नहीं और दूसरों का भी अमन दुरुस्त नहीं, तो फिर सुकून कहाँ से मिलेगा? फिर क्या हुआ?
उन दिनों में मुझे दावत इस्लामी के एक इस्लाम भाई मिले, तो
अच्छा,
ये उस वक्त इन्होंने एक बयान का कैसेट मुझे दिया तोहफे में, तो सुनने के लिए दिया। तो मैंने कहा यार वो मैं सुनता नहीं हूँ, मतलब उन्होंने कहा नहीं आप
सुनाता
सुने,
हूँ।
हाँ जी आप सुने, जो सुनाता था
हाँ
उसको,
ठीक है ठीक।
तो इन्होंने कहा नहीं नहीं आप सुने, ये तो मतलब है कि हमारे पीर मुर्शिद हैं और बड़ा अच्छा बयान होता है इनका। मैं थोड़ा कॉलेज लाइफ में, एक तो वो फेज था, एक और फेज था कि जो औलिया किराम के बारे में दिल में अकीदत ना रहना
ओके
और वो जहन में वो चीजें, तो मैं इन चीजों से भी और भी था कि यार आप लोग तो यूं करते हैं तो यूं करते हैं। तो उसने कहा आप ये बयान सुने तो सही ना, मुझे लगा कि इसमें वो होगा किसी को माजअल्लाह गाली दे रहे होंगे, किसी को कुछ कर रहे होंगे, मेरे जहन में ये चीजें भी बैठी हुई थी कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं आप बयान सुने, ये हमारे शेख हैं, हमारे मुर्शिद हैं। तो मैं ले लिया, मेरा बस उस वक्त मैं लेते हुए मेरी नीयत वाकई सुनने की नहीं थी,
नहीं थी।
नहीं थी।
ओ
मैं ये बार बार कह रहा था मैं रख लेता हूँ कैसे, अब क्या उसको मतलब बहस करूँ, लेकिन पता नहीं कैसे फिर मैंने वो लगा ली कैसे। तो
आहा,
वो बयान था पैगामे फना,
पैगाम फना,
पैगामे
बहुत
फना,
बहुत अमीर सुन्नत
अमीरे
का
सुन्नत का ये
ऑडियो कैसेट,
ऑडियो कैसेट था।
जिन बया मतलब वो खास बयाना जिन्होंने बहुत जबरदस्त मंदी इनकलाब बर्पा किए हैं, उनमें से एक बयान है, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, और कब्र की पहली रात।
उन्हीं दिनों में एक बयान मैंने सुना था, उसके बाद सुना था पुरइसरार बच्चा,
हाँ,
ये भी बयान मैंने
ये
सुना था
पैगाम फना था वो बयान। फिर
जी, पहला बयान मैंने सुना पैगामे फना।
क्या हुआ?
ये सुन के वाकई मुझे मतलब एक
ऐसा भी
नसीहत,
बयान होता है।
ऐसा भी बयान होता है और नसीहत वाकई, वो बात चीजें तो हम अकीदत के उसमें अब कोई ले ले तो ले ले, लेकिन उस वक्त मैं अकीदत में नहीं सुन रहा था, सच्ची बात है। मैं वैसे एक सुन रहा था कि ये कोई मुबल्लिग हैं या कोई बयान कर रहे हैं, लेकिन वाकई जो नसीहत असर करती है ना, तो बा अमल बा असर होता है, जैसे मेरे लिए सुन्नत का है फरमान भी हमने पढ़ा, वो वाकई ये कि ये दिल पे असर की ही बातें, लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं, घड़ी जो है ये पैगामे फना दे रही है, सूरज तुलू होता है डूब जाता है, वाकई रियलाइज हुआ कि हमें मर जाना है, दुनिया छोड़ के जाना, हम सदा रहने के लिए तो आए कोई नहीं। तो उसके कुछ ही अरसे बाद खुशकिस्मती कह लें कि ये आलमी इज्तिमा कहते थे उसको शायद दावत इस्लामी का, बैन अल-अक़वामी इज्तिमा उस वक्त, सालाना इज्तिमा जो कराची में लास्ट इज्तिमा था, वो 94 की बात, ढाई था कोई
कोरंगी ढाई
ढाई, हमारे लिए ये नाम भी अजीब था कि ढाई ढाई में कहाँ जा रहे हैं। हमने याद दिलाया तो याद आया कि भाई ढाई था कुछ ही है, हम लांडी स्टेशन पे उतरे, मेरा फर्स्ट टाइम जिंदगी में कराची आना था, मैं पहले कभी कराची आया ही नहीं था जिंदगी में, फर्स्ट टाइम आए थे, तो वहां से हम लोग इज्तिमा में शिरकत की और यहाँ माहौल देखा दावत इस्लामी का और बयानात सुने, तो दिल बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मुतमिन हुआ। पहले बैत के बारे में तो मैंने अर्ज किया ना कि थोड़ा था, लेकिन अमीर सुन्नत का बयान, फिर जिक्र, वो तसव्वुर मदीना, तो ये चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी और बहुत ज्यादा यूनिक भी थी, मतलब बिल्कुल नई चीज थी, तसव्वुर मदीना तो बहुत ज्यादा एक नई चीज थी हमारे लिए कि यूं भी मदीने की बातें यादें होती हैं। तो यहाँ फिर मैं अमीर सुन्नत से बैत हुआ,
बैत हो गए माशाल्लाह।
तो लेकिन एक चीज थी, उस वक्त मैं ग्लासेस यूज नहीं करता था, मेरी आईसाइट वीक थी, मुझे पता तो चल गया था कि कॉलेज में कि मैं ग्लासेस यूज नहीं करता था, उसमें भी एक पीछे उसका भी एक याद थी कि वो किसी लड़ाई में टूटे थे, मैंने कहा ये लड़ाई वाला पहला ये कहता मैं तेरा चश्मा तोड़ दूंगा मार के, मैंने ग्लासेस यूज करने छोड़ दिए थे कि ये लड़ाई में पहले। तो अब मेरे ये हुआ कि रात में बयान हुआ और आखिरी बयान भी असर के, मेरे ख्याल
पहले असर से मगरिबी बयान था मेरा,
जी जी
मैंने तो एक रात में बयान था और जो आखिरी नशिश होती थी
जी जी
उसमें असर से मगरिब बयान और मगरिब के बाद जिक्र और दुआ, ये भी हुआ है।
तो मुझे मतलब मैं देख नहीं सका था, मैं बैत हो गया, मैं बैत होके जा रहा था तो मुझे याद आया कि मतलब जहन में आया कि कोई पूछे भी तुम्हारे पीर साहब कैसे हैं, तो उस वक्त नाम ये मदनी चैनल था और कुछ भी ऐसा मोबाइल का दौर
नहीं था, बस रश भी तो था ना,
रश बहुत था,
बहुत रश, बहुत
पब्लिक, मेरे लिए तो जिंदगी का मतलब पहली बार आया था, तो मेरे लिए तो वाकई इतनी बड़ी गैदरिंग तो मैंने देखी नहीं थी, मक्के मदीने का सफर हुआ नहीं था, हज वगैरह में कुछ देखा हो तो इंसान ने, बहुत बड़ी गैदरिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो मैं ज़ियारत नहीं हो सकी, बहुत दूर से
गोविंद देखे हुए लौट रहे
ऐसे, फिर तो बहुत ज्यादा उदास दिल से जा रहे थे, पलटते वापस जा रहे थे, हम इज्तमागा से निकले स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो सामने से वो गाड़ी आई एक, तो मेरा मतलब जिंदगी की सबसे पहली वो कह लें ज़ियारत थी, जो मेरे लिए मतलब किसी जिन्होंने देखा हुआ था मेरे सुन्नत को उन्होंने नारे लगाए कि अत्तार की आमद मरहबा, किसी ने मुझे कहा जी हजरत साहब आ गए, मेरे सुन्नत आ गए, तो मैं बैग कंधे से मैंने बैग फेंका, अब मैं था मतलब यंग था उस वक्त, तो लंबा कद था, मैंने परे पूरे किया लोगों को, अच्छा मैं गाड़ी गई स्क्रीन पे, रश तो लगा हुआ था मेरे सुन्नत को देखने का, मेरी सुन्नत मेरी पहली झलक जो मुझे भूलती नहीं, वो मुस्कुराता चेहरा
आया
और ऐसे मुस्कुराते हुए ऐसे हाथ हिला रहे ऐसे, तो ना मतलब नक्श हो जाना दिल पे,
95 की बात है,
94 वो इज्तिमा गा से हम निकले थे, वो फिर जब अगले चौक तक यू टर्न तक आके ना,
उन दिनों आगे पीछे सिक्योरिटी का भी नहीं था, वो 95 में वाक्य हुआ था,
जी जी जी,
तो ये बिल्कुल यूं
पब्लिक में ऐसे गाड़ी आई और मतलब वो इश्यूज सिक्योरिटी के थे ही नहीं, तो ये फिर अगले यू टर्न से गाड़ी टर्न लेके वापस चली गई। अच्छा मुझे ऐसे लगा कि जैसे अपने इस मतलब मुसाफिर मेहमान को उदास दिल से जा रहा हूँ और मैं कहता हुआ जा रहा हूँ कि यार देखा ही नहीं है, मतलब वो कोई पूछे तो कैसे हैं वीर साहब आपके, तो मैं क्या बताऊंगे मैं कैसे हैं, तो ऐसे लगा कि जैसे आई है गाड़ी और
देख लो ऐसे
ऐसे हैं करके वापस चली गई।
माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, वो यादगार थे कोरगी का इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भी इसमें शिरकत की है, मैं 91 में आया था दावत इस्लामी में, तो चंद साल कोरंगी के इज्तिमा में शिरकत हुई है, फिर इसके बाद मुल्तान
जी जी
हुआ, सबसे पहले तवक्कुल टाउन,
तवक्कुल टाउन
में इज्तिमा हुआ था मुल्तान का, और वो तो फिर उसकी भी फिर वो तो फिर बहुत आगे निकल गया
जी
माशाल्लाह। तो ये आपका दावत इस्लामी में आना
जी, जी।
वो लड़ाई झगड़ों से निकलना, उसके बाद तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं
ना, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का दीनी माहौल, नहीं जिस चीज में मैं कहता था ना, बेसुकूनी है दिल में, करार नहीं है, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं, मुंतशिर सी जैसे जिंदगी बेतरतीब सी चल रही है, ऐसे जैसे ठहराव आ गया।
अच्छा हाजी असर भाई, ये बताइए कि मुझे एक बात ये पता चली है कि कोई ऐसा वाकया भी आपकी ज़िंदगी में आया है कि आपने किसी को रोता हुआ देखा तो आपको उसके रोते हुए भी बड़ी हैरत हुई और फिर उसके बाद उसके रोने की वजह भी एक बड़ी खूबसूरत पता चली है, वो वाकया क्या था?
असल हुआ ये कि हमारे मोहल्ले में जो इमाम साहब थे वो हज पे या उमरे पे जा रहे थे। अब ये मुझे पूरा याद नहीं कि था उनका सफ़रे मदीना, तो मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान हुआ कि इमाम साहब जा रहे हैं मदीने।
सफरे
जी
मदीना भी हमारी इस्तेलाह है,
जी जी
वो
जी
हज उमरे पे जा रहे होंगे।
हज या उमरे पे जा रहे थे,
हाँ
तो वो ऐलान हुआ कि जो मिलना चाहते हैं तो आप मिल लें। तो मैं गली में, कुछ लड़के दो तीन हम खड़े थे, तो उस वक्त दावत सामी के माहौल में नहीं थे
नहीं
हम,
था।
नहीं था माहौल। हमने भी सोचा चलें, वो इमाम साहब जा रहे हैं तो चलते हैं मस्जिद में देखते हैं। तो लोग जमा थे और कुछ सफ़ें बनी हुई थी, उस सबसे मिल रहे थे। दूसरी या तीसरी सफ में एक सब्ज इमामे में लड़का जो है वो नजर आया, कोई बहुत नोटिस नहीं किया हमने, तो मतलब मुख्तलिफ लोग खड़े थे। तो देखिए जैसे इमाम साहब उसके करीब आए ना मिलने के लिए, तो वो इतना धाड़े मार के रोया
आए,
एकदम मस्जिद में, जैसे ना मतलब सब
सबकी तवज्जो ले ली।
तवज्जो ले ली और मतलब है कि लोग जमा से हो गए। और मैं भी मतलब साइड पे किसी चीज, खिड़की सी थी या मुझे याद पड़ता है, उसमें मैं ऊंचा होकर खड़ा होकर देखने लगा कि क्या हो रहा है, क्यों वो लिपट गया और वो मतलब लोग पकड़ने लगे कुछ। तो मैंने किसी से पूछा ही क्या हुआ है इसको, कह रहे ये ना इमाम साहब चूंकि मदीने जा रहे हैं इसको मदीना याद आ रहा है, तो ये रह गया है तो ये इसलिए रो रहा है। तो मैं हंस पड़ा, मैं रो रहा है, सबको परेशान कर दिया, टिकट ले और मदीना चला जाए, इसमें मतलब इतना शोर के रोने की क्या जरूरत है, टिकट ले मदीना चले जाए। तो बात हुई हो चले गए हाजी उमर। उसके बाद जैसे ये कैसेट वाला हुआ, पैगामे फना बयान, और फिर उसके बाद दावत सामी का माहौल मिला, जस्ट ये 1.5-2 साल, 2-2.5 साल के अंदर ही, 96 में अमीर सुन्नत का मुझे याद पड़ता है कि लाहौर से चल मदीना का काफिला सफर हुआ था हज का, तो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हाजरी थी। हम लोग भी उस वक्त, मैं दावत सामी माहौल में आ गया, वो छोटा सा कस्बा था, उसका जिम्मेदार बन गया अपने शहर से भी, हम उस कस्बे से कुछ टाइम भी लेके गए, तो हम वहाँ हाजिरी हो। मैं सुन का एयरपोर्ट की तरफ जब सफ़र हुआ, मतलब उस वक्त तो जैसे एंट्री हुई चल मदीना काफिले वालों की, अब एक लाइन खिंचती है, गेट बंद होता है कि ये जा रहे हैं, हम रह गए
एयरपोर्ट।
एयरपोर्ट पे। तो अब मुझे उस वक्त की हालत जो थी कि ये सब जा रहे हैं चल मदीना वाले और हम रह गए, मैं वो जंगला पकड़ के, मतलब
हाँ,
जो हाल था उस वक्त, और बेबसी थी कि सब जा रहे हैं और मैं तो, वही वो नमाजी जो था ना जिससे मैंने बात की,
वो रो रहे थे
मैं बेतहाशा रो रहा था कि
बेतहाशा,
जिसको कहे ना कि मतलब होश ही कोई
बंद
ना
बंद
टाइम
टूट
में,
चुका था।
बिल्कुल ऐसे। वो उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि अजर भाई वो समझ आ गई हो, इस्लाही भाई क्यों रोंदा थी,
क्या बात है मदीने
समझ आ गई हो सबज पगड़ी वाला क्यों रोता
लगाया था
था?
वो,
मैं क्या बड़ी समझ आ गई।
बड़ी समझ।
नहीं कहता लो ना टिकट चले जाओ, मैं क्या नहीं ये बुलावे की बात है, अब समझ आ गई कि मदीने जाना ये करम और बुलावे का मामला है।
हाय हाय,
उससे मुझे वो अमीर सुन्नत की निस्बत, दावत सामी के माहौल, इससे इसके बाद मैंने वो नेकी की दावत फैजाने सुन्नत पहले उसमें भी था, ये अभी नेकी की दावत किताब में भी है, तफसीर नाइमी के हवाले से मेरे सुन्नत ने वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर, इसकी तफसीर जो तफसीर नाइमी के हवाले से बयान की गई, उसका खुलासा ये कि मुसलमानों ऐसी तंजीम बनो या बन के रहो जो तमाम टेढ़े लोगों को खैर की दावत दे। तो उसमें एक जुमला है, फासिकों को तकवे की दावत दे, गाफिलों को बेदारी की दावत दे, और खुश्क मिजाज लोगों को लज्जत इश्क की दावत। ये जो तफसीर मैंने बाद में पढ़ी तो मुझे उससे ये समझ में आया कि एक वक्त वो था कि हम मदीने की याद में रोने वाले पर हंस रहे थे, और एक वक्त वो आया कि हम भी मदीने जाने वालों को देख कर रो रहे थे कि सब मदीने को चले हम रह गए।
जन्नत में तेरी रिजवा सोजो गुदास भी है, जन्नत के जो تو کہیں کہ کیا نام لو جو فرشتے ہیں جنت پر؟
رضوان.
ہاں رضوان. تو جنت میں تیری رضواں, یہ ان سے کہا جا رہا ہے جنت میں تیری رضواں, سوز و گداز بھی ہے, پوچھا جا رہا ہے ہے عشق میں رولاتا سرکار کا مدینہ. تو آقا ابھی سے یہ بات تو آج تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر, اور ہم جیسے یہ اظہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ منظر بہت دیکھے ہم نے یہاں کراچی میں, جو کراچی کی ان کو پتہ ہوگا شارع فیصل سے ایئرپورٹ کا راستہ جاتا ہے, تو شارع فیصل پر میلوں تک گاڑیاں اور اسلامی بھائی پیدل جایا کرتے تھے, اور امیر اس میں ٹرک پر ہوتے تھے اور یہ ساؤنڈ سسٹم پر کلام چلا کرتے تھے, اور پھر ایئرپورٹ تک پہنچتے تھے, حج ٹرمینل ہوتا تھا. ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی امیر سنت سفر مدینہ پر گئے ہمیں وہاں تک پہنچنے کی سعادت ملتی رہی ہے, دیکھنے کی سعادت ملتی رہی ہے. اور اس وقت جب اس وقت کوہرا مچتا تھا جب آپ کو صوفے سے لے کر, کیونکہ وہ پبلک اتنی ہوتی تھی کہ خود تو جانا مشکل ہوتا تھا, صوفے سے لے اندر لے جایا جاتا تھا, اور ایک کلام اس وقت ہوتا تھا میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا محبوب کبریا سے میرا سلام
جی, یہی کچھ پڑھا جا رہا تھا
محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا. اس کا شعر ہے جب ساحل عرب پر پہنچے تیرا سفینہ. یہ پورا ایک پورا کلام ہے نا, تو بہت یہ پرسوز کلام ہے. اس کے علاوہ اور بھی یہ سلام کے کلام ہے کہ جو جا رہے ہوتے ہیں ان کو سنایا جاتا ہے, تو وہ بڑا کوہرا مچتا تھا. تو اس وقت بڑی مطلب کہ اب جیسے آپ کے سامنے ہو نا, بعض اوقات لوگ کو وہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے حاجی اظہر بھائی, کہ جب دعوت اسلامی کا دینی ماحول نہیں تھا تب ان کو حیرت ہوتی تھی کہ یار یہ کیوں رو رہا ہے, ٹکٹ کرا ہے مدینہ جائے, مگر پھر پتا چلا کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں. مجھے ایک ماضی کی یاد آ گئی
جی,
امیر سنت کے ساتھ کچھ گورنمنٹ کے آفیشلس, ڈی سی اور اس طرح کے ایس ڈی ایم وغیرہ آفیشلس ہوتے, بیوروکریسی ہوتی ہے, پولیس والے بھی تھے, تو ان کی ایک ایسے میٹ اپ تھا, بیٹھک تھی, نیکی کی دعوت تھی, کھانا بھی ساتھ تھا. جی اظہر وہ چل مدینہ کے دن تھے, مطلب حج حج کے دن تھے, تو حاجی عبد الحبیب بھائی نا رکن شورا
جی جی
ان کا گھر تھا وہاں, یہ ساری ترکیب تھی. تو لان میں باہر ہم بیٹھے تھے اور یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا, تو اسلام بھائی آئے تھے اور وہ گیٹ کے پاس کھڑے تھے, خوب رو رہے تھے کہ دو مرشد چل مدینہ اور اس طرح کی ترکیب تھی. تو جو ڈی سی تھا اس نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں, اللہ تو کسی نے کہا کہ ان کو مدینہ جانا, تو بیٹھے ان کو مدینہ بیٹھے ان کو مدینہ, اس طرح کا ہوا تھا. تو پھر ان کو بتایا کہ ان کو حضرت کے ساتھ مدینہ جانا ہے, اور حضرت کو کہہ رہے گا ہم کو مدینہ لے چلو. اب وہ تو ان کو یہ ہوتا ہوگا نا کہ حضرت پیسے پیسے دیں گے
جی جی,
تو یہ تو وہ یہ عشق کی باتیں, محبت کی باتیں, اور اس میں لذت بہت ہے, اس میں لذت بہت ہے. وہ ویسے تو یہ آپ کے وہ لاہور کے لیے کہتے ہیں نا, جس نے لاہور حقیقت تو یہ کہ جس نے مدینہ نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں, یہ یاد کر لیں, جس نے مدینہ نہیں ویکھیا جمیا ہی نہیں, جس نے کعبہ مکہ نہیں دیکھا جمیا ہی نہیں, جس نے گنبد خضرا نہیں دیکھا جمیا ہی نہیں. یہ ہے دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, کون ہے ان کا نظارہ کچھ نہیں. اور داتا دربار کی بھی بات ہے, جس نے داتا کا دربار نہیں ویکھیا, تو یہ اولیاء کرام ہو یہ کی تو باتیں کچھ اور ہوتی ہے. خیر اللہ پاک ہمیں بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے, اور عشق مدینہ, یاد مدینہ, غم مدینہ کی لذتوں سے اللہ پاک ہمیں بھی یہ بھی لذتیں عطا فرمائے. اور بھی سوالات ہیں, کالس لیتے ہیں.
हूँ मोहम्मद आजम अतारी, मरकजुल औलिया, लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। इस वक्त हम अपने कारोबार पर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मदनी चैनल साथ साथ देखने की सआदत मिल रही है। अजहर भाई को माजी की यादें में खुश आमदीद कहते हैं। अजहर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमने इनको उस वक्त में भी देखा है जब ये चौक दर्स दिया करते थे मंडी वारबर्टन में, तो हम इनके चौक दर्स में खड़े होते थे और इनका दर्स सुनते थे। तो उस वक्त में आज से कोई गालिबन कोई 17-18 साल पहले की बात है कि मेरे अहले सुन्नत फैसलाबाद तशरीफ लेकर आए, तो उस वक्त में अजहर भाई यहाँ से कोई 6-7 अदद बसे भर कर लेकर गए और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल वो सब तकरीबन लोग मेरे अहले सुन्नत दामत बरकातुल्लाह अलिया से बैत हुए। तो इस सिलसिले में हम अजहर भाई के बहुत शुक्र गुजार है कि इन्होंने हमें दामन अतार के साथ वाबस्ता कर दिया। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, बरकत अता फरमाए।
माशाल्लाह, क्या बात, ये भी खूबसूरत याद है, ये बहुत खूबसूरत याद है। तो ये दर्स बयान आपका शुरू से चल रहा है, इसके पीछे भी कोई, आप तो अबुल बयान है, अमीर अहले सुन्नत ने कुनियत दी अबुल बयान, अल्लाह का बहुत करम है, बड़ा खूबसूरत बयान है। अल्लाह पाक और बरकत दे, अल्लाह मजीद फजीद और माशाल्लाह बारक अल्लाह। तो ये बयान और दर्स का सिलसिला, इसके पीछे भी पता चला है कि कुछ है, राज है, कोई राज से पर्दा उठाया जाए।
ये भी माजी की एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी कह लें कि प्यारी याद है।
अच्छा,
और उसमें दर्सो बयान का तो अब जैसे कॉलेज लाइफ तक तो आपने महसूस कर ही लिया कि वो क्या दर्सो बयान क्या क्या होता होगा, कुछ ऐसा माहौल था ही नहीं कि मैं बयान करूं या दर्स दूं या, लेकिन ये हुआ था जैसे कराची इज्तमा में आए और फिर वापसी, फिर मैं उस हमारे इलाके का मुझे निगरान बना दिया गया, कि मुझे दर्स वगैरह देने में बहुत हेजिटेशन थी, मतलब ये काम की यही नहीं थी,
घबराहट होती थी,
घबराहट होती थी और मैं मतलब दे नहीं पाता था, जिसको कहते हैं ना कांपना, मतलब ये कांपने वाला माहौल होता था, मुझसे बयान करते हुए दर्स देते हुए बड़ा बहुत घबराहट सी फील होती थी, जुबान चलती नहीं थी, खुलता नहीं था, ये दर्स देते हुए अटक जाना। तो अमीर अहले सुन्नत तशरीफ लाए उस वक्त शायद 12 माह के लिए मेरे सुनकर लाहौर सफ़र हुआ था शायद, तो सोडी वाल मुलाकात होती थी, तो मैं पहली बार जब मुलाकात के लिए हाजिर हुआ, लाइन में लगे हुए थे, तो मुझे सोचूं मैं ये कहूँगा ये कहूँगा, लेकिन जब मैं पहुँचा तो एक जहन में आया कि मैं ये कहूँ कि हजरत हम मुझे ना दर्स बयान करना नहीं आता, तो ऐसा कुछ दम कर दें कि मैं दर्स देने लग जाऊँ, बयान करने लग जाऊँ। कमाल शफकत फरमाई अमीर अहले सुन्नत ने, मुझे करीब किया, सीने पर हाथ रखा, दम किया। तो उसको एक होता है, इंसान कहता है कि मतलब है कि एक तसव्वुराती चीज़ है, मतलब इसको फिजिकली फील करना कि दिल में कुछ तब्दीली चेंजेस या फिजिकली कुछ चीज़ महसूस होती है, तो बहुत ज़्यादा इस उस रात के बाद वो दम जो फरमाया अमीर सुन्नत ने, तो दर्स में बयान में फिर जो घबराहट थी हेजिटेशन थी वो ख़त्म हो गई, और उसके बाद अगले दिन से ही मैं शायद मुझे याद पड़ता है कि मैं बयान करता हूँ, मुझे भी ये लग रहा था कि वाकई कुछ चीज़ शामिल हो गई है साथ, जैसे मदद शामिल हो गई और सीना खुल जाना जिसको कहते हैं, जहन खुल जाना, उसके बाद दरसो बयान में घबराहट कभी अल्हम्दुलिल्लाह फील हुई नहीं।
अबुल बयान बनाए इन्होंने इन्हीं के फैजान से माशाल्लाह, ये होता है औलिया करम की बरकतें होती हैं, नेक लोगों की बरकतें होती हैं, उसने जन का कमाल है और बुजुर्गों के हाथों की शफकत, ये एक अदा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आपने भी अपने दस्ते मुबारक सीने पर रख कर दुआएँ की हैं। तो मुफ्ती अहमद आका नईम अलैहि रहमान ने लिखा है कि ये जो औलिया कराम बुजुर्ग दीन पीर कामिल जो ये करते हैं, ये उसी अदा का सिलसिला है, उसी फैज़ान का सिलसिला है कि औलिया कराम ने एक लोग सीने पर हाथ रख कर दुआएँ देते हैं और फिर उससे बरकतें नसीब होती है। ये मैंने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल दे दें।
अज़हर अतारी, दामत बरकातुल आलिया, माजी की यादों के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो ये बताएं कि आप दावत इस्लामी के माहौल के अंदर कैसे आए और किसकी तरगीब पर आए, और फिर आप दावत इस्लामी के अंदर हाजी मुश्ताक अतारी रहमतुल्लाह ताला के साथ कितना अरसा आपने गुजारा, और उनका अखलाक और उनके बारे में कुछ मदनी फूल अता फरमाए।
तो ये मैं आपको बताऊं नाजरीन, शायद आप भी ये सिलसिला देख रहे हैं, 35वां ये किस्त है इसकी, 35th एपिसोड है ये, और आपने नोट किया होगा कि अक्सर प्रोग्राम में जो लाइव होते हैं उसमें हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला के ताल्लुक से भी हमारे इस्लाम में सवाल करते हैं। ये खुद हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह के अखलाक और आपकी खूबसूरत दावत इस्लामी की जो ज़िंदगी थी, ये उस पर एक दलील है कि हमारे इस्लामी भाई हाजी मुश्ताक अलैह रहमा को भूलते नहीं हैं और इनको इस बात की खुशी होती है, ख्वाहिश होती है कि कहीं ना कहीं हमें इनका जिक्र सुनने को मिले। जी अज़हर भाई, आपसे खुद दावत इस्लाम के ताल्लुक से तो बयान कर दिए, हाजी मुश्ताक अलैह रहमा के ताल्लुक से भी, इसके अलावा अगर कोई कौन दावत देकर इज्तिमा में लेकर जाता था वगैरह?
इज्तिमा तो हमारे इलाके में शुरू में नहीं था, उस वक्त जड़ावाला के कुछ इस्लामी भाई आया करते थे।
अच्छा, जड़ावाला?
जड़ावाला डेढ़ घंटा तकरीबन वहाँ से ट्रेन का रास्ता था, ट्रेन गुजरती थी लाहौर से, शोरकोट जो ट्रैक है उस पर हमारा वारबटन भी आता आगे जड़ावाला। जुम्मा के रोज़ इस्लामी भाई आते थे और ये दावत वगैरह देते थे और जहाँ जमा करके मस्जिद में इस्लामी को बयान वगैरह होता था। फिर उसके बाद थोड़े अरसे बाद इज्तिमा शुरू हुआ, तो वही हमने जिक्र तो कुछ किया कि वो माहौल में आने का सबब क्या बना और कैसे दावत इस्लामी का दीनी माहौल मिला, और वो इज्तिमा और उसके बाद फिर एतिकाफ आ गया। तो ये चंद चीज़ें ऐसी स्टेप वाइज होती गई जो मजबूत करती गई, मतलब जिसमें पुराने दोस्त या वो चीज़ें अपनी तरफ खींच नहीं सकें। तो दावत इस्लामी के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह जानो पुख्तगी होती गई, क्योंकि इसमें चौक दरस में एक चीज़ मुझे याद आई जो अभी आज़म क्लाथ मार्केट के इस्लामी भाई ने की थी कॉल किसी ने, तो मैं चौक दरस दे रहा था, नया नया ही शुरू हुआ था, तो मेरा कॉलेज या स्कूल का एक दोस्त मिल गया पुराना जानने वाला। अब वो छेड़ी जाए खड़ा हंसे जाए, पहले तो उसने देखा कि ये इस गेटअप में ही कौन है, तो अब खड़ा हंसी जाए, अब उसको यकीन ही ना आए कि ये बिल्कुल एक मतलब पलटा ही खा जाए जिंदगी का, एक मतलब सर्कल ही चेंज हो जाए कुछ। तो अब वो हंसे और कहे कि ये क्या है, मुझे कहे ओए राणा एक ही कीता ही, एक ही पेस बटाया है, ओए इन्हों तो लगता कुछ मतलब है कि चीट करना है, इन्हों लगता कुछ मतलब है कि तू इन्हों मजाक करना है, कहते प्रैंक करना है, तो लगता है प्रैंक करना है इनके साथ कोई। और मैं नहीं प्रैंक नहीं यार, मैं हो गया इनके साथ मिल गया, मैं नहीं मानता। तो इसके बाद शब बरात का इज्तिमा दावत इस्लामी का आया, उसमें वो आया तो उसने दावत इस्लामी का देखा माहौल, और वो उसने वाकई कहा कि यार मुझे लगता नहीं था कि ये कोई इंसान चेंज इस तरह की लाइफ से निकल के इधर आ सकता है, लेकिन जैसे ये लोग हैं, जैसा इनका माहौल है। और मैं सुना उस वक्त टेलीफोनिक रिले हुआ करता था, तो वो बयान में फिर उसने अमीर सुन्नत का बयान सुना, उसने भी कहा कि वाकई ये वो लोग हैं जिनके साथ बैठ के इंसान वाकई चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है ना स्टेप वाइज बनती गई माहौल में, पुख्तगी का, इस्तकामत का, अल्लाह दे दे इस्तकामत। तो वो इतकाफ आया फिर उसमें जब, अब ये था कि अमीर सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकात मुलालिया की नस्बत ने एक ऐसा असर छोड़ा जो है ना वो, जिससे बाकी फैमिली को, खानदान को भी अमीर सुन्नत की नस्बत मिली और
बैत होते गए,
बैत होते गए। अच्छा, मैं कॉलेज के बाद मैं जब मास्टर्स की तैयारी भी कर रहा था, तो मैं एक फैक्ट्री में एक जॉब करने लग गया था, मैं एज ए स्टोर इंचार्ज वहाँ जॉब थी मेरी और मैं इलाका ही निगरान भी था। उन दिनों में अब समय दावत इस्लामी के माहौल का खासा है, मदीने की याद में रोना और ये चीज़ें, जब हज के अय्याम आते हैं तो इन दिनों में ख़ास तौर पे बेकरारी बढ़ती। तो मुझे याद है वहाँ एक सैयद साहब आया करते थे, तो उन्होंने आके बताया था कि मैं मतलब किस तरह मदीना पाक में था, तो वहाँ मुझे मतलब जहन बना या किसी ने कहा उनसे कि उसको ना अज़हर कादरी या उसको मदीने भेजना। अब वो तलाश में थे कि ये कौन है, अब उन्होंने मुझे वहाँ मुलाकात हुई, तो वो उन्होंने कहा कि आप इस साल हज पे जाएंगे।
अच्छा,
जाएंगे। तो वो मेरा हज का सफ़र उस साल 2001 की गालिबन बात है। तो फिर हमारे इलाके में महफिल का अहतमाम किया गया, उसमें हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह की ज़्यारत पहली बार मेरा मतलब कुर्बत ज़्यारत वो थी जब हमारे इलाके में थे, हमारे घर तशरीफ़ लाए। वाकई जैसे हमारे जी
आपके घर आए,
घर तशरीफ़ लाए और बहुत पोलाइट, हमारे लिए तो था ना कि दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान है और
तो
निगरान थे, हाजी मुश्ताक निगरान बन चुके थे, निगरान शूरा थे। 2001
के बाद की बात कर,
2001 की बात है,
2001 में निगरान शूरा थे
जी। तो शायद उनके पंजाब के आखिरी सफरों में से ये सेकंड लास्ट या लास्ट वो सफर थे। تو لیکن ان شفقت محبت اور بڑی میرے لیے ایک اور ان کے ساتھ یاد ہے کہ عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر ادا کی،
ماشاء اللہ،
میں نے ان کو یہ دیکھا، مطلب تقویٰ، پرہیزگاری اور میٹھے،
ہاں
میٹھے ملے تو محسوس ہو کہ
یعنی عوامی فرد اتنا غیر متنازع ہو اور ہر دل عزیز ہو نا، اس میں انسان کی خوبی کی ایک جھلک ہوتی ہے. یعنی ایک شخص تو ملنا جلنا ہی نہیں، کوئی اس کی کوئی پبلک، اس کو کہتے ہیں کہ فین فالوئنگ نہیں ہے، کوئی پبلک فگر نہیں ہے، لیکن ایک شخص نعت خوان ہے، پبلک میں ہے، تنظیم میں ہے اور نگرانی بھی ہے، امامت بھی ہے، خطابت بھی ہے اور بین الاقوامی اجتماع میں امیر سنت کے ساتھ ان کے کلام چلتے تھے، تو اس عورت تو تھی. اس پروفائل میں اور اس لیول پر ایک شخص عوامی طور پر بھی پولائٹ، ہمبل، عاجزی والا، نرمی والا، اخلاق والا اور ہمدردی والا مشہور ہو، اور اس سچ کوئی آپ کو ملتا نہ ہو جو یہ کہے کہ یار یہ مجھے انہوں نے یوں کہہ دیا، نے یوں کہہ دیا. یعنی ہر حکم و بیش ہر شخص ملنے والا خوبی کی بات کرے، یہ ایک انسان کے اعلیٰ کردار کا بہت زبردست پہلو ہوتا ہے.
بے شک
ملنا جلنا کسی سے ہے ہی نہیں، اتنا کچھ آنا جانا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر کیا وہ مطلب کہ کوئی چھیڑے گا تو آدمی بولے گا نا. لیکن یہ جو پہلو ہے نا زندگی کا، یہ ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کے لیے بہت ہوتا ہے کہ جس کو پبلک ڈیلنگ میں ہے یا جو پبلک فگر ہے، جو لوگوں میں ہے، اسے اپنے اخلاق کا بڑا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، نرمی اختیار کرنا. ہر طرح کا شخص ہوتا ہے، کوئی نرم بات کرنے والا ہوتا ہے، کوئی سخت بات کرنے والا ہوتا ہے، کوئی پیار سے بلاتا ہے تو کوئی اس کا موڈ ہے نہیں بلاتا، کسی اپنے انداز سے بلاتا ہے، کوئی مخالفت کرتا ہے تو کوئی سخت اختلاف کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اس میں اگر ہم نرم ہیں اور خوف خدا، عشق رسول کے ساتھ ہم سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے کردار میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے جیتے جی بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اچھے نام سے، اچھے کام سے، اچھے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. الحمدللہ، ماشاءاللہ اظہر بھائی آپ کا وہ سلسلہ جاری ہے. تو دنیا میں کن کن ممالک میں جانا ہوا دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے تعلق سے؟
میں یورپ میں کئی بار، 6-7 بار.
آپ کے پاس پورا یورپ تھا؟
جی، یورپ میں تو فریکوینٹلی جانا ہوا، 4-5-6 سال تو آپ کے ساتھ بھی سفر ملا، جانشین امیر علیہ سنت ان کے ساتھ بھی سفر ملا. گلف میں سب سے پہلا سفر میرا ہوا تھا افریقہ میں، 2012 سے شاید مجھے یاد ہے 12 میں سب سے پہلے افریقہ کا سفر تھا، کینیا، یوگینڈا، زنزیبار، تنزانیہ وغیرہ، ان ممالک میں سفر ہوا تھا. اس کے بعد پھر یہ
تو وہاں کی یادیں ہیں،
یادیں تو بہت ساری ہیں،
وقت اگرچہ کم ہے لیکن کوئی ایک آدھ یاد
بڑی، جس کو کہتے ہیں کہ مطلب خوبصورت یادوں میں، یہ عید میری زندگی کی پہلی عید تھی ملک سے باہر، گھر سے بھی دور، تو پہلی بار عید کہیں باہر کر رہے تھے، رمضان تھا، افریقہ میں گزرا تھا. تو عید کی رات ایک تاجر تھے، وہ ان کا کوئی جاننے والا بزنس مین ہی تھا، اس کو ملنے کے لیے لے کر آئے نا، کہ یہ مسلمان نہیں تھا، وہ جو تاجر تھا ہمارا جاننے والا وہ مسلمان تھا، وہ اس کا کوئی بزنس میں جاننے والا تھا، تو اس کو اسلام کی دعوت دی. تو رات دیر تک ہماری گفتگو چلی، اگلے دن ہمیں عید والے دن یہ ممباسا سے کوئی 150-200 کلومیٹر ہے مزار ایک سید باغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ،
پٹریاں
آپ کی بھی حاضری ہوئی ہے مدنی چینل پہ ہم نے دیکھا تھا، تو وہ سید باغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہم حاضری کے لیے گئے. تو وہ بھی تاجر جو تھا نا، وہ بھی اپنے اس دوست کو لے کے وہاں آ گئے عید والے دن. تو وہاں مزار شریف کے باہر بیٹھ کے، تو جگہ تھی بیٹھنے کے لیے وہاں، تو وہاں بیٹھ کے کچھ دیر گفتگو ہوئی، تو اس نے مجھے ایک سوال کیا، واٹ از دا اسپیشلٹی ان محمد صلی اللہ علیہ
وسلم،
وائی وی ہیو ٹو فالو ہم. تو یہ اس نے مطلب سوال کر دیا کہ کیوں ان میں اسپیشلٹی کیا ہے. تو اب ہم جب سے امیر سنت کی نسبت ملی ہے، دعوت اسلامی کا ماحول ملا ہے، تو ہم نے تو سیرت کی باتیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، معجزات، تو یہ چیزیں ہی پڑھی سیکھی ہیں، تو ہم خصوصیت ہم سے پوچھے کہ ہمارے پیارے نبی میں خصوصیت کیا ہے، تو فضل و کمال کی کون سی وہ چیز ہے جو ان کے در سے نہیں بٹتی.
جی،
تو وہ تو پھر وہاں تھوڑی دیر بات چلی، تو وہ پھر وہاں جو اس نے کلمہ پڑھا،
ماشاء
وہ میری زندگی کا بہت یادگار لمحہ تھا، کہ میں مطلب قلب میں ایک راحت
حاصل ہے.
حاصل
حاصل ہے جی.
इस तरह के सफर नॉर्वे में जानशी ने मेरे सुन्नत के बयान में एक नॉर्वेजियन आया था, नॉर्वेजियन में पीछे ट्रांसलेट हो रहा था और वो नॉर्वेजियन था। फ्लाइट में हमारे किसी इस्लामी भाई को मिले, एस्टोनिया में हमारे किसी इस्लामी पीएचडी कर रहे थे, उनको फ्लाइट में मिला था। उसने दावत दी कि हमारे अमीर सुन्नत के जो है वो बेटे जानशीन है वो तशरीफ ला रहे हैं और बयान है, तो उसको लेकर आए। वो बयान उसने सुना और वो बयान के एंड पे वो मुसलमान हो गया। ये उसका नाम फिर शाबान रखा, नाम मोहम्मद रखा, पुकारने के लिए शाबान। वहीं वो अमीर सुन्नत के जरिए गौस पाक का मुरीद भी बना। तो उसके रमज़ान में पता चला उसने रोज़े रखे। ये सफ़र की वो चीज़ें याद रहती हैं कि जिससे जो थकावटें नहीं उतर जाती जिसको।
ये दावत इस्लामी के दीनी कामों के लिए सफ़र करते हैं, मदनी काफिलों में सफ़र करते हैं, इसकी बड़ी बरकत है। मस्जिद के दरवाजे खोले गए, ताले पड़े होते थे मस्जिद को, और कई ऐसे सफ़र याद आएंगे जहाँ अल्लाह पाक ने गैर मुस्लिमों को ईमान की नेमत अता फरमाई, फिर रूहानियत का मिलना, फिर निकी की दावत का आम होना, मस्जिद का बनना, इस्लाह उम्मत का बड़ा काम। ये दावत इस्लामी के दीनी कामों के लिए सफ़र करना, बद्दी काफले में सफ़र करने की ये बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह पाक हमें ये बरकत हासिल करने की भी तौफीक अता फरमाए। कॉल लेते हैं।
माशाअल्लाह अज़्ज़ल, आज फिर से प्रोग्राम माजी की यादें में गुलशन अत्तार के तो बहुत ही प्यारे फूल महक रहे हैं। तो मेरा अबुल बयान हाजी अजहर साहब से ये सवाल अर्ज है कि या सईदी, जब आप पहली मरतबा सफ़र हज पर रवाना हुए तो कुछ माजी की हंसी यादें हमारे साथ शेयर कीजिए कि वो कैसा था। बल्कि ये भी कहीं से सुना था कि आपको मस्जिद नबी शरीफ में कोई बुजुर्ग मिले थे अचानक से, और फिर उन्होंने आपको कुछ अता भी किया था। तो अगर ये वाकया भी जहन में हो तो कुछ इरशाद फरमा दीजिए।
मेरा निशुरा, आपका प्रोग्राम माजी की यादें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। ये हाजी अजहर साहब की बारगाह में ये अर्ज है कि आपके मदीना शरीफ में पहली हाजिरी कब हुई और किस तरह हुई, इसके बारे में इरशाद फरमा दें। जज़ाकअल्लाह खैर।
अजहर भाई की बारगाह में ये सवाल है, आपका सफर मदीना पहला कब हुआ? अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुहुमुल आलिया के साथ अगर सफर मदीना हुआ वो कब, और मैं कोई खास बात की तो वो भी इरशाद फरमा।
अब मदीने की बातें हो रही थी, माहौल दावत इस्लामी का है, मराते भी मदीने की, बातें भी मदीने की, याद जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की है? जी,
पहला सफर तो उम्रे का हुआ था 98 या 99 में। वो मेराज शरीफ की रात पहली बार जिंदगी में मदीने की हाजिरी हुई थी। तो देखा सब्ज गुंबद, तो आंखें ये बोली ये मंजिर है दिल में जमाने के काबिल। वाकई वो चीज भी जेन से कभी निकलती नहीं, जब पहला जलवा जब गुंबद खजरा का। तो हज का 2001 का जो हम जिक्र कर रहे थे, हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए उस महफिल में, तो फिर वो जो सफर हुआ तो वहां अमीर अहले सुन्नत के साथ मुलाकात हुई थी।
अच्छा अच्छा,
वो बड़ी एक उसमें चंद चीजें जो होती ना, जो आई सब जो ज्यादा चीजें जो ना वो अट्रैक्ट करती हैं, जो शख्सियत जिससे इंसान जो है ना ज्यादा मुतासिर होता है। एक चीज जो मैंने पहली बार फील की थी अमीर अहले सुन्नत के साथ, वो जब हज से वापस तशरीफ लाए थे लाहौर ही, वो चल मदीना का जो सफर था उसके वहां से रवानगी थी, वापसी वहीं हुई। तो शहरी में एक जगह सोडीवाल के करीब ही किसी के यहाँ थे, तो कुछ इस्लाम में बैठे थे, तो वहां एक ने सलाम कहा कि हमारे इलाके के सब इस्लामी भाई ने आपको सलाम भेजा। तो कोई इधर सलाम कह रहा था, कोई मुबारक दे रहा था, कोई बातें हो रही थी, एकदम तवज्जो फरमाई, फरमाया कि क्या सब ने सलाम बोला है आपको? नहीं, मैं इससे ये हमारे मुहावरे चलते हैं सब की तरफ से सबको सलाम,
सब
तो ये एक मुहावरे चलते ही है। तो मैंने देखा कि इनकी तबीयत में हुसासियत कितनी है, बेटा झूठ तो नहीं हो जाएगा। मैं हैरान कि ये इतना भी गहराई में सोचता आज के दौर में। वहां जो मक्का पाक में हुआ तो अमीर सुन्नत के साथ तवाफ वगैरह के बाद, ये रात को हुआ था, हमें सुन्नत उस वक्त व्हील चेयर पे याद पड़ता थे, तो हम लोग हाजिर हुए अहराम में थे, हम हज के बाद की बात है। तो हमारी अगले दिन मदीना शरीफ रवानगी थी, तो अमीर सुन्नत के पास में बैठा, तो मैंने कहा हुजूर कुछ अता फरमा दें, तो आपके पास खजूरें थी, कुछ खजूर अता फरमाने के, तो मैं वो करीब किया, जैसे खजूर खाने लगा ना, मैं तो पीछे हटा ली, मुस्कुराए थोड़ा। तबस्सुम तो इनका एक है, मतलब वाकई इनका देखा हिस्सा है, तो मतलब मुस्कुराए और खींच लिया ना, और मैं बेटा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा है। मुझे महसूस हो कि एक चीज रूटीन में चल रही है, हम ले रहे हैं दे रहे हैं, कुछ पकड़ते हुए सीधे हाथ का इस्तेमाल, रच चीज रोक लेना उल्टे हाथ से अगर पकड़ने लगा, ये चीजें महसूस की कि जो शख्सियत, मतलब एक होता हम बाज चीजें हम अपनाने की कोशिश करते हैं कि कुछ जिसमें कहते हैं ना बाज
बातकल्लुफ
करते हैं,
ये आदतन करते,
ये आदतन, ये बहुत आपने खूबसूरत लफ्ज बोला है, जो मैं मतलब कहना चाह रहा था कि ये मुझसे लफ्ज बन नहीं पा रहा था कि ये है क्या, कि जो चीजें जिस चीज ने मुझे बहुत मुतासर किया कि ये बनावट नहीं है,
आदत
है, ये आदत है,
हिस्सा
बन गई इनकी शख्सियत का,
ऐसा हो चुका।
तो वो चीजें जो है ना वो और ज्यादा अटैक करती कि जो फराइज और वाजिबात, तो सवाल ही पता नहीं होता ना कि ये सोचे भी छूट जाए, जो सुन्नत मुस्तहबात तक का जो एहसास करने वाली शख्सियत, तो वो चीज है कि वो फिर
इश्के रसूल के ये खैरात होती है, इश्के रसूल करवाता है, मोहब्बत रसूल के ये समझे फैजान है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अदा करने की एक बस सोच बन जाती है, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से ये अदा पता चलती है क्या कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया है, ये इस्तेमाल फरमाया, ये पसंद है, और फिर आगे जाते तो पता चलता है अच्छा ये सुन्नत भी है, तो ये मतलब के तो ये एक इश्क रसूल का एक समझे कि फैज़ान होता है, और फिर अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत के भी कुछ दर्जात होते हैं, तो जो जिस दर्जे पर फाइज हो वो उस फैज़ान पता ही चला जाता है। बातें तो होती रहेंगी, अब ये कि कुछ सिलसिले को ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अज़हर भाई अल्लाह पाक आपको खुश रखे,
आमीन,
शादो आबाद रखे, और अल्लाह पाक आपका और हम सब का और तमाम देखने सुनने वाले आशिकाने रसूल का अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे, आमीन। बिजाहि खातिम नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
माज़ी की याद माज़ी।